एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। सभी सुनने वालों का एकत्र ज्ञान गोष्ठी में फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं।
नमस्कार। हाँ, ये किताब हमारी आज की डिजिटल जिंदगी को समझने में मतलब काफी मदद करती है।
बिल्कुल। किताब का नाम है हुक्ड, हाउ टू बिल्ड हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। लेखक हैं नीर इयाल।
जी, और ये किताब असल में समझाती है कि कैसे कुछ ऐप्स, कुछ वेबसाइट्स हमारी आदत सी बन जाती हैं।
और ये आज के समय में इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, हम सब तकनीक से घिरे हुए हैं, है ना? स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, शॉपिंग ऐप्स।
हाँ, ये सब हमारी जिंदगी का मतलब एक तरह से हिस्सा बन गए हैं।
बिल्कुल। और कभी सोचा है क्यों कुछ ऐप्स हम दिन में पता नहीं 10 बार खोलते हैं, शायद बिना किसी खास वजह के भी?
हाँ, ये किताब इसी क्यों का जवाब देने की कोशिश करती है। और ये सिर्फ प्रोडक्ट बनाने वालों के लिए नहीं है।
नहीं नहीं ये हम सबके लिए जरूरी है जो भी इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आज की जो अटेंशन इकोनॉमी है ना।
हाँ, जहाँ सबका ध्यान खींचने की होड़ लगी है।
एग्जैक्टली। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा ध्यान कैसे खींचा जाता है, कैसे बनाए रखा जाता है, ये खेल कैसे चलता है।
आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, और इस खेल को समझाने के लिए नीर याल मुझे लगता है एक बेहतरीन गाइड है।
वो क्या कहते हैं, मनोविज्ञान, तकनीक और बिजनेस के संगम।
हाँ, बिहेवियरल डिजाइन।
हाँ, बिहेवियरल डिजाइन। उसके जाने माने एक्सपर्ट हैं, लेखक हैं, स्पीकर हैं, निवेशक भी हैं।
और उनकी बैकग्राउंड भी काफी इंटरेस्टिंग है। स्टैनफोर्ड से एमबीए, डिजाइन स्कूल में भी पढ़ाई की है उन्होंने।
और सबसे अहम बात, उन्हें वीडियो गेमिंग और विज्ञापन इंडस्ट्री में काम करने का अनुभव है।
सोचिए, ये दोनों इंडस्ट्रीज तो मतलब लोगों का ध्यान खींचने और बनाए रखने में माहिर हैं। बिल्कुल। और उन्होंने खुद भी टेक कंपनियां शुरू की हैं, तो वो सिर्फ थ्योरी नहीं जानते, प्रैक्टिकल साइड भी समझते हैं।
हाँ, ये तो उनकी खासियत है। वो अकादमिक रिसर्च जैसे साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, उसको अपने जमीनी अनुभव के साथ मिलाते हैं।
उन्होंने सिर्फ पढ़ा नहीं है, इन प्रिंसिपल्स को लागू भी किया है।
और एक और बात, उनका नजरिया बड़ा बैलेंस्ड है। एक तरफ तो उन्होंने हुक्ड लिखी।
हाँ।
जो प्रोडक्ट बनाने वालों को सिखाती है कि आदतें कैसे बनाएं,
और दूसरी तरफ इनडिस्ट्रैक्टेबल, जो हम जैसे यूजर्स के लिए है कि अपना ध्यान कैसे भटकने से बचाएं।
सही कहा। तो ये जो ड्यूअल पर्सपेक्टिव है ना, ये उन्हें इस टेक्नोलॉजी के नैतिक पहलुओं पर एक गहरी और संतुलित समझ देता है, जो आज के जमाने में बहुत जरूरी है।
चलिए, अब थोड़ा किताब के सार पर आते हैं। हुक्ड असल में एक प्रैक्टिकल गाइड है।
हाँ।
ये बताती है कि लोगों को किसी प्रोडक्ट की आदत लगना ये कोई तुक्का या किस्मत की बात नहीं है,
बल्कि सोची समझी डिजाइन का नतीजा हो सकता है।
बिल्कुल, एक पूरी प्रक्रिया है इसके पीछे।
हाँ, और किताब का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो काफी मतलब सोचने पर मजबूर करता है। याल कहते हैं कि आज के समय में सबसे सफल प्रोडक्ट वो हैं जो हमारी आदत बन जाते हैं।
आदत मतलब वो काम जो हम बिना किसी बाहरी वजह के लगभग अपने आप ही करने लगते हैं।
हाँ, और ये आदतें एक खास मॉडल से बनती हैं, जिसे वो कहते हैं हुक मॉडल।
हुक मॉडल।
नीर याल का मानना है कि किसी प्रोडक्ट के लिए यूजर की आदत बनाना, यही आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में सबसे बड़ा एडवांटेज है। एक ऐसा किला जिसे तोड़ना दूसरों के लिए बहुत मुश्किल होता है।
और ये किताब उस बड़े सवाल का भी जवाब देती है कि आखिर क्यों कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ ऐप्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं,
जबकि दूसरी, जिन पर शायद खूब पैसा भी खर्च होता है, वो फ्लॉप हो जाती हैं।
हाँ, और जवाब छिपा है यूजर के अंदरूनी संकेतों में, इंटरनल ट्रिगर्स, हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, हमारा मूड। सफल प्रोडक्ट इन्हीं अंदरूनी संकेतों से जुड़ जाते हैं।
अच्छा, और ये किताब है किसके लिए, मतलब टारगेट ऑडियंस कौन है?
वैसे तो मुख्य रूप से ये उन लोगों के लिए है जो प्रोडक्ट बनाते हैं, एंटरप्रेन्योर, डिजाइनर, मार्केटर, इंजीनियर।
लेकिन सच कहूं तो ये हर उस इंसान के लिए फायदेमंद है जो अपनी डिजिटल आदतों को समझना चाहता है,
है ना? हाँ, बिल्कुल। और शायद थोड़ा कंट्रोल भी पाना चाहता है। कौन नहीं जानना चाहेगा कि उनका फोन उन्हें बार बार अपनी तरफ क्यों खींचता है।
सही बात है। तो आइए इस हुक मॉडल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये किताब का दिल है, समझिए।
हाँ, बिल्कुल। ये एक चार कदमों वाला चक्र है, एक साइकिल, जो यूजर की किसी समस्या या जरूरत को कंपनी के समाधान से बार बार जोड़ता है,
तब तक जब तक वो एक आदत ना बन जाए।
हाँ, और सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? प्रोडक्ट को यूजर के अंदरूनी संकेतों से जोड़ना।
ठीक है, तो इसके चार चरण हैं। पहला है ट्रिगर, यानी संकेत,
मतलब बदलता इनाम, और चौथा इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। तो पहला कदम ट्रिगर, संकेत, ये वो चिंगारी है जो हमें कुछ करने के लिए उकसाती है।
अच्छा,
दो तरह के ट्रिगर होते हैं। पहले है बाहरी ट्रिगर, एक्सटर्नल,
जैसे फोन पर आया कोई नोटिफिकेशन,
ईमेल, विज्ञापन,
हाँ,
ऐप का आइकन दिख जाना या किसी दोस्त ने कुछ कह दिया। ये नए यूजर्स को लाने के लिए जरूरी है, पर
ये असली खेल नहीं है।
नहीं, असली खेल है आंतरिक ट्रिगर का, इंटरनल ट्रिगर्स।
ये हमारे अंदर से आते हैं, हमारी भावनाएं, जैसे
बोरियत महसूस होना।
हाँ, बोरियत, अकेलापन, किसी चीज को लेकर अनिश्चितता, या वो आजकल का मशहूर डर फोमो,
फियर ऑफ मिसिंग आउट,
कुछ छूट जाने का डर।
बिल्कुल, ये हमारे विचार भी हो सकते हैं या हमारी रोज की आदतें। सफल प्रोडक्ट हमारे किसी दर्द, किसी खालीपन या किसी नेगेटिव फीलिंग से चुपके से जुड़ जाते हैं।
जैसे कोई उदाहरण?
जैसे जब बोरियत होती है तो हाथ अपने आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब की तरफ बढ़ जाता है ना?
हाँ, होता है।
अकेलापन महसूस होता है तो शायद फेसबुक या व्हाट्सएप खोल लेते हैं।
दिमाग में कोई सवाल आता है तो
तुरंत गूगल।
एग्जैक्टली।
कभी सोचा है क्यों हम बिना सोचे ही फोन उठा लेते हैं? अक्सर कोई अंदरूनी ट्रिगर ही हमें खींच रहा होता है। यही वो कनेक्शन है जिसे प्रोडक्ट बनाने वाले हासिल करना चाहते हैं।
समझ गया। तो एक बार ट्रिगर ने काम कर दिया, फिर आता है दूसरा कदम, एक्शन यानी कार्य।
हाँ, ये वो सबसे आसान काम है जो यूजर किसी इनाम की उम्मीद में करता है।
यहाँ निरयाल स्टैनफोर्ड के ही एक और रिसर्चर बीजे फॉग के मॉडल का जिक्र करते हैं। बी इज इक्वल टू एम ए टी।
बी इज इक्वल टू एम ए टी यानी कोई व्यवहार होने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं, मोटिवेशन प्रेरणा, एबिलिटी क्षमता, और ट्रिगर संकेत।
और एयाल यहाँ एक बहुत मतलब पते की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि डिजाइनरों को सबसे ज्यादा ध्यान यूजर की क्षमता पर देना चाहिए, एबिलिटी पर।
मतलब
उस काम को करने को इतना आसान बना दो, इतना सरल कि सोचना ही ना पड़े।
अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। मतलब मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है कि काम आसान हो।
हाँ, किसी की प्रेरणा बढ़ाना मुश्किल है लेकिन काम को आसान बनाना ज्यादा मुमकिन है। ये बात सुनने में थोड़ी उल्टी लगती है ना?
हाँ, थोड़ी सी।
लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम दिन भर में क्या क्या करते हैं तो ये बिल्कुल सही लगता है। याल बताते हैं कि सरलता के कई पहलू हैं। कितना समय लगता है, पैसा, शारीरिक मेहनत, कितना दिमागी जोर मतलब सोचना कितना पड़ता है।
क्या ये समाज में अटपटा लगेगा? क्या ये रोज के रूटीन से अलग है?
हाँ, एक्शन जितना सरल होगा उसके होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी।
इसके उदाहरण तो हम रोज देखते हैं। सोशल मीडिया पर नीचे स्क्रॉल करते जाना कितना आसान है।
अमेज़न पर बाय नाउ बटन दबाना, एक क्लिक, काम खत्म।
पिंटरेस्ट पर कोई इमेज पिन करना, तो मूल मंत्र वही है, एक्शन शुरू करने के लिए करना सोचने से ज्यादा आसान होना चाहिए।
और अब आता है इस मॉडल का सबसे दिलचस्प हिस्सा, शायद सबसे ताकतवर भी, तीसरा कदम, वेरिएबल रिवॉर्ड,
बदलता हुआ अप्रत्याशित इनाम।
हाँ, एक्शन करने के बाद यूजर को इनाम तो मिलता है, पर कब, क्या और कितना मिलेगा ये पक्का नहीं होता। नियर याल इसे गुप्त सॉस कहते हैं।
ये बदलाव या अप्रत्याशितता क्यों जरूरी है? वेरिएबल क्यों होना चाहिए रिवॉर्ड?
क्योंकि अगर इनाम हमेशा एक जैसा हो, प्रिडिक्टेबल हो, तो हम बोर हो जाते हैं। लेकिन जब इनाम बदलता रहता है, अनिश्चित होता है, तो हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम, खासकर डोपामिन, वो एक्टिवेट हो जाता है।
अच्छा, ये हमें उत्साहित रखता है, एक तरह की तलब पैदा करता है।
बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है जैसा स्किनर ने अपने कबूतरों वाले प्रयोग में देखा था। जब इनाम अनियमित मिलता था, कबूतर और ज्यादा बटन दबाते थे। याल का एक तर्क ये भी है कि हमें चीजों से ज्यादा उनकी तलाश पसंद है, वो उम्मीद, वो अनिश्चितता।
हाँ, ये अप्रत्याशित इनाम हमें बांधे रखते हैं।
याल तीन तरह के वेरिएबल रिवॉर्ड बताते हैं। पहला है ट्राइब के रिवॉर्ड, मतलब समूह के रिवॉर्ड।
ये हमारी सामाजिक जरूरतों से जुड़े हैं, दूसरों से जुड़ना, उनकी स्वीकृति पाना, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लाइक्स, कमेंट्स मिलना।
हाँ, हमें नहीं पता किसकी पोस्ट दिखेगी, कौन लाइक करेगा, यही अनिश्चितता हमें खींचे रखती है।
दूसरा है हंट के रिवॉर्ड, शिकार के रिवॉर्ड। ये कुछ खोजने, शिकार करने की हमारी आदिम इच्छा से जुड़े हैं।
जैसे ट्विटर या न्यूज फीड को स्क्रॉल करना, ये देखने के लिए कि कौन सी नई जानकारी या खबर मिलेगी।
स्लॉट मशीन खेलना भी इसी का उदाहरण है। क्या जैकपॉट लगेगा? यहाँ शिकार जानकारी का है, मनोरंजन का है या पैसे का।
और तीसरा है सेल्फ के रिवॉर्ड, ये हमारी आंतरिक संतुष्टि से जुड़े हैं, किसी चीज में महारत हासिल करना, काम पूरा करना,
जैसे गेम में अगला लेवल पार करना।
हाँ, या डुओलिंगो पर रोज भाषा सीखने की स्ट्रीक बनाए रखना, या अपना ईमेल इनबॉक्स खाली करके इनबॉक्स जीरो का सुकून पाना।
समझ गए। और चौथा आखिरी लेकिन बहुत जरूरी कदम है इन्वेस्टमेंट, निवेश।
ये वो है जहां यूजर खुद प्रोडक्ट में कुछ मेहनत, समय या डेटा डालता है। इसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर ये हुक को पूरा करने और अगले चक्र को शुरू करने के लिए बहुत जरूरी है।
ये निवेश दो जरूरी काम करता है। पहला, ये अगले ट्रिगर को लोड करता है।
कैसे?
जैसे जब आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हैं तो आप असल में एक संभावित जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं जो बाद में नोटिफिकेशन बनकर आएगा।
अच्छा, हाँ।
जब आप ट्विटर पे किसी को फॉलो करते हैं तो आप भविष्य में अपनी फीड के लिए कंटेंट तैयार कर रहे होते हैं।
ठीक है, और दूसरा काम?
दूसरा, ये प्रोडक्ट में मूल्य संग्रहित करता है, स्टोर्ड वैल्यू। सोचिए, पुरानी चीजें इस्तेमाल से घिस जाती हैं, पर आदत बनाने वाले डिजिटल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल के साथ और ज्यादा मूल्यवान हो जाते हैं।
ये कैसे मूल्यवान? कैसे?
ये मूल्य कई तरह का हो सकता है। आपका कंटेंट, जैसे इंस्टाग्राम पर आपकी तस्वीरें। आपका डेटा, जैसे स्पॉटिफाई को पता है आपको कैसा संगीत पसंद है।
आपके कनेक्शंस या प्रतिष्ठा, ट्विटर पर फॉलोअर्स, या आपका सीखा हुआ कौशल, जैसे फोटोशॉप चलाना सीखना।
हाँ, और इस निवेश का नतीजा क्या होता है? यूजर के लिए उस प्रोडक्ट को छोड़ने की लागत, स्विचिंग कॉस्ट बढ़ जाती है।
मतलब उसमें इतना कुछ इकट्ठा हो जाता है कि उसे छोड़कर किसी नए प्रोडक्ट पर जाना मुश्किल लगता है।
बिल्कुल, ये एक तरह का लॉक इन इफेक्ट पैदा करता है और यूजर के उसी हुक चक्र में वापस आने की संभावना बढ़ जाती है।
हाँ, तो ये था हुक मॉडल, ट्रिगर, एक्शन, वेरिएबल रिवॉर्ड, इन्वेस्टमेंट। अब अगर हम किताब के कुछ बड़े संदेशों या थीम्स पर बात करें।
हाँ, तो एक बात जो एयाल बार बार कहते हैं वो ये है कि आदतें ही असली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है।
आदतें कैसे?
एक बार कोई ऐप आपकी आदत बन गया तो उसका कॉम्पिटिटर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे हटाना बहुत मुश्किल है। हम अपने आसपास ही देख सकते हैं भारत में कुछ पेमेंट ऐप्स या सोशल मीडिया ऐप्स।
हाँ, ऐसे हैं जिन्हें हम बदलना पसंद नहीं करते, भले ही अच्छे विकल्प मौजूद हों।
बिल्कुल। दूसरी बड़ी थीम है आंतरिक ट्रिगर्स का महत्व।
सफल प्रोडक्ट सिर्फ नोटिफिकेशन या विज्ञापनों के भरोसे नहीं रहते, वो हमारी भावनाओं, हमारी बोरियत, हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ जाते हैं।
सोचिए, सफर में जब थोड़ा खाली समय मिलता है तो हाथ अपने आप किसी न्यूज ऐप या गेम की तरफ क्यों जाता है? ये आंतरिक ट्रिगर है।
तीसरा, सरलता की शक्ति, एक्शन को जितना हो सके आसान बनाना।
भारत में जो पेमेंट ऐप्स या ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स बहुत कामयाब है, जरा सोचिए वो इस्तेमाल करने में कितनी आसान है। एक दो क्लिक और काम पूरा। यही सरलता उन्हें हमारी आदत बनाती है ना?
हाँ, बिल्कुल। चौथी थीम, अप्रत्याशितता का जादू, वेरिएबल रिवॉर्ड।
सोशल मीडिया फीड हमें घंटों क्यों उलझाए रखती है? क्योंकि हमें नहीं पता अगली बार स्क्रॉल करने पर क्या मजेदार चीज दिख जाएगी।
हम सबने ये महसूस किया है, वो फोन बार बार चेक करना, ये सोच करके शायद कुछ नया आया हो, ये वेरिएबल रिवॉर्ड का ही कमाल है।
पांचवा, यूजर का निवेश। हम अनजाने में ही इन प्लेटफॉर्म्स में कितना कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, हमारा डेटा, हमारी प्लेलिस्ट्स, तस्वीरें, दोस्त, पसंद नापसंद।
ये सब मिलके उस प्लेटफॉर्म को हमारे लिए और कीमती बना देता है, उसे छोड़ना मुश्किल कर देता है।
और छठा, जो मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है नैतिक जिम्मेदारी।
हाँ, एथिक्स।
इयाल मैनिपुलेशन मैट्रिक्स नाम का एक फ्रेमवर्क देते हैं। वो बनाने वालों से दो सवाल पूछते हैं, क्या ये प्रोडक्ट यूजर की जिंदगी को सच में बेहतर बनाता है,
और
क्या मैं खुद इसे इस्तेमाल करूंगा करूंगी। हाँ, ये सवाल बनाने वालों को सोचने पर मजबूर करते हैं कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं या उनका फायदा उठा रहे हैं।
भारत जैसे देश में जहाँ डिजिटल दुनिया इतनी तेजी से बढ़ रही है,
ये सोचना और भी जरूरी है कि हम कैसी तकनीक बना रहे हैं, सहायक या शोषणकारी।
बिल्कुल, और यही नैतिक जिम्मेदारी वाली बात उन कुछ बुनियादी विचारों में से एक है जिसे निर इयाल अपनी किताब में बार बार रेखांकित करते हैं।
कुछ और जरूरी बातें जो दिमाग में रह जाती हैं।
जैसे?
जैसे पहला मुख्य विचार ये है कि आदत बनाने वाली कंपनियां सिर्फ मार्केटिंग पर निर्भर नहीं रहती, वो अपनी सर्विस को यूजर की रोज की दिनचर्या और उनकी भावनाओं से जोड़ देती हैं।
ये सीधे सीधे आंतरिक ट्रिगर से जुड़ने की बात है।
बिल्कुल। दूसरा अहम विचार जिसे हमने पहले भी छुआ था कि एक्शन शुरू करने के लिए करना सोचने से ज्यादा आसान होना चाहिए।
सरलता का नियम, अगर कोई चीज इस्तेमाल करने में जरा भी मुश्किल है तो वो आदत नहीं बन सकती, चाहे कितनी भी उपयोगी क्यों ना हो।
तीसरा, वेरिएबल रिवॉर्ड इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि उनमें अप्रत्याशितता है, हमें नहीं पता कि अगली बार क्या मिलेगा, और यही अनिश्चितता हमें बार बार वापस खींचती है।
ये हमारे दिमाग को लगातार एंगेज रखता है।
हाँ, और चौथा, वही मैनिपुलेशन मैट्रिक्स वाली बात। ये बनाने वालों को उनकी नैतिक जिम्मेदारी याद दिलाती है। आदतें बनाने की तकनीक एक शक्तिशाली औजार है
और इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। ये सोचना जरूरी है कि हम लोगों की भलाई कर रहे हैं या अनजाने में उनका नुकसान।
और दिलचस्प बात यह है कि ये हुक मॉडल सिर्फ टेक कंपनियों के लिए नहीं है।
मतलब
हम आम लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
हाँ, बिल्कुल।
इसे समझ कर हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। इस मॉडल को समझना हमें ये पहचानने में मदद करता है कि कौन सी चीजें हमारा ध्यान भटका रही हैं और क्यों।
अच्छा, कैसे?
जैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा आंतरिक ट्रिगर, बोरियत, तनाव हमें फोन उठाने पर मजबूर कर रहा है।
हम बाहरी ट्रिगर जैसे नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हैं।
हाँ, हम एक्शन को थोड़ा मुश्किल बना सकते हैं, जैसे ध्यान भटकाने वाले ऐप को होम स्क्रीन से हटाकर किसी अंदर के फोल्डर में डाल देना।
अच्छा, ताकि उसे खोलने में एक एक्स्ट्रा स्टेप लगे।
बिल्कुल। और इसी मॉडल को पलटकर हम अच्छी आदतें बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे
एक्सरसाइज करने की आदत डालनी हो तो।
हाँ।
तो बाहरी ट्रिगर सेट करें, जैसे सुबह का अलार्म या जूते दरवाजे के पास रखना। एक्शन को आसान बनाएं, शुरू में सिर्फ 10 मिनट करें।
इनाम को बदलें, वेरिएबल रिवॉर्ड। कभी म्यूजिक सुने, कभी पॉडकास्ट, कभी सिर्फ ताजी हवा का आनंद लें।
और निवेश करें, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें, दोस्तों को बताएं।
अरे वाह, ये तो कमाल का है। मतलब यही सिद्धांत पढ़ाई को मजेदार बनाने या हेल्थ ऐप्स के जरिए सेहतमंद आदतें अपनाने में भी काम आ सकते हैं।
हाँ, बिल्कुल। सोचिए एक हेल्थ ऐप कैसे काम करता है। रिमाइंडर, ट्रिगर, आसानी से खाने या कसरत का हिसाब रखना, एक्शन।
कभी ग्राफ दिखाना, कभी बैज देना, वेरिएबल रिवॉर्ड।
और हफ्ते के लक्ष्य सेट करना, इन्वेस्टमेंट। ये सब हुक मॉडल के हिस्से हैं।
अगर मुझसे पूछें तो इस किताब से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख शायद वो आंतरिक ट्रिगर्स की छिपी हुई शक्ति है। हम सोचते हैं हम अपनी मर्जी से फोन उठाते हैं, पर अक्सर हमारी कोई अंदरूनी भावना या आदत हमें धकेल रही होती है।
सही कहा।
और दूसरी चीज, वो सरलता का सिद्धांत। किसी काम को आसान बना देने का असर कितना गहरा हो सकता है, ये मैंने पहले इतना नहीं सोचा था।
और मेरे लिए शायद सबसे ज्यादा सोचने वाली बात इसका नैतिक पहलू है। ये समझना कि आदतें बनाना एक विज्ञान है, कोई जादू टोना नहीं, और इस विज्ञान का इस्तेमाल करने वालों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है।
वो सवाल कि क्या ये लोगों की मदद कर रहा है?
हाँ, ये हर डेवलपर, हर कंपनी को खुद से पूछना चाहिए। बात सिर्फ लोगों को जोड़े रखने की नहीं, बल्कि सार्थक रूप से जोड़ने की होनी चाहिए।
तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। अगली बार जब आप अनजाने में अपना फोन उठाकर कोई ऐप खोलें, तो एक पल रुककर सोचें कौन सा आंतरिक ट्रिगर अभी सक्रिय हुआ और हुक मॉडल का कौन सा चरण आपको वापस खींच रहा है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।